अच्छा सुनो, हम इस बारे में सोचेंगे, पर अभी नहीं। पहले मेरे काम को थोड़ा बढ़ने दो, दुकान वापस हासिल करने दो, ताकि मैं हमारे बच्चे को एक बेहतर भविष्य दे सकूं, तुम्हारी और उसकी हर इच्छा, हर ख्वाहिश पूरी कर सकूं। फिर हम बच्चे के बारे में भी सोचेंगे। अब तो खुश हो तुम? नाराज कशिश ने उसकी बात सुनकर तिरछी नज़रों से उसे घूरा और संशय भरे स्वर में सवाल किया, सच बोल रहे हैं? बाद में अपनी बात से मुकरेंगे तो नहीं? मेरी इतनी मजाल, तुम मुझे इस कमरे में रहने दोगी अगर मुकर गया तो? कशिश ने डरने का नाटक करते हुए कहा। बिल्कुल नहीं, आपका बोरिया बिस्तरा समेटकर कमरे से बाहर पटक आऊंगी और साथ में आपको भी फेंक दूंगी, कशिश ने तपाक से जवाब दिया। ईशान की आंखों की पुतलियां फैल गईं उसकी बात सुनकर। कुछ तो शर्म करो पागल लड़की, पति हो तुम्हारा? पति है परमेश्वर नहीं कि सर पर बिठाकर आपकी पूजा आरती करती फिरूं, कशिश ने खींचते हुए जवाब दिया और ईशान को घूरते हुए उसकी ओर पीठ करके लेट गई। शायद ये उसकी नाराजगी दिखाने का तरीका था। ईशान उसका जवाब सुनकर हैरान था। उसके खफा होकर रुख फेरने पर वो और ज्यादा चौंक गया। वो बात करना तो चाहता था, पर कशिश की जिद देखकर उसने अभी बात ना करना ही बेहतर समझा और खुद भी लेट गया। इस सारे फसाद की जड़ चाची थीं। उन्होंने ही कशिश के दिमाग में ये ऊटपटांग बात भरकर उसके सामने एक नई मुसीबत खड़ी कर दी थी। कम से कम ईशान को तो अभी ऐसा ही लग रहा था। कशिश की बातों ने नींद और चैन तो उड़ा ही दिया था। आंखें मूंदे वो इस समस्या को निपटाने का तरीका सोच रहा था, तभी अचानक एक नरम मुलायम हथेली उसके सीने पर आकर ठहरी। ईशान ने चौंकते हुए अपनी आंखें खोली और सर घुमाकर देखा तो नींद में कशिश उसके करीब आ चुकी थी और एक हथेली उसके सीने पर रखे उसके करीब ही सो रही थी। खुद तो तुम अभी तक एक छोटी सी नादान बच्ची जैसे बिहेव करती हो, एक बच्चे की जिम्मेदारी कैसे संभालोगी? ईशान ने कशिश की मासूम सी सूरत देखते हुए खुद से ही सवाल किया। मन ही मन सोचा कि जया दीदी अब जल्दी चली जाएं ताकि कशिश के सर से ये बच्चे वाला फितूर उतर जाए। फिर सर छटकते हुए सब ख्यालों को परे हटाया और कशिश को अपनी बाहों के घेरे में कसते हुए अपनी आंखें मूंद ली। दो तीन दिन बाद घर में छोटी सी पूजा रखी गई और साथ ही बच्चे का नाम भी रखा गया, रक्षित। एक दो दिन में धीरे धीरे सभी लोग अपने ठिकानों पर लौट गए थे। कौशल्या जी ने जया दीदी को रोकना चाहा, पर उनकी सास बच्चे के बिना रहना नहीं चाहती थी, सो बच्चा और जया दीदी भी चली गई। उनमें जाने पर सबसे ज्यादा उदास कशिश ही हुई थी। कुछ दिन लगे पर फिर वो सामान्य हो गई। फोन पर बात बात होती ही थी, पर रक्षित के जाने के बाद घर सूना सूना सा हो गया था, जिससे घर में एक बच्चे की कमी सबको खलने लगी थी। बातों बातों में कभी कौशल्या जी तो कभी चाची कशिश को बच्चे के लिए कहती, जिसके कारण ये बात अब तक भी उसके दिमाग से निकल नहीं पाई थी और अक्सर उसकी ये फरमाइश ईशान तक पहुंच जाती थी। परेशान बात संभालना सीख गया था। कभी तो वो कशिश को अपनी बातों में उलझाने में कामयाब रहता, पर कभी कभी उसके और कशिश के बीच बहस हो जाती या कशिश अनमनी सी हो जाती। पर गलती उसकी भी नहीं थी, उसके दिमाग में ये बातें डाली जा रही थीं। शायद गलती तो बड़ी मम्मी और चाची की भी नहीं थी। जब से उनके रिश्ते की हकीकत उनके सामने आई थी, दोनों उनके रिश्ते के लिए कुछ परेशान रहती थीं। उन्हें लगता था कि अब भी उनके बीच सब ठीक नहीं, और बच्चे के आने का मतलब था कि उनके बीच मियाँ बीवी वाला रिश्ता बन गया है। बस इसलिए वे दबाव बना रही थीं और ईशान हिचक के कारण सामने से चाची और बड़ी मम्मी को कुछ कह नहीं पा रहा था। बीती रात भी उनकी थोड़ी बहस हो गई थी। बड़ी मुश्किल से उसने कशिश को मनाया था। अभी भी उसका शरीर भले ही दुकान पर था, पर मन इस नई परेशानी में उलझा था और अब उसने फैसला कर लिया था कि साफ साफ शब्दों में चाची और बड़ी मम्मी से बात करेगा। यूं बार बार कशिश की इच्छा ठुकराकर उसके दिल को चोट पहुंचाना ठीक नहीं था, और इसका गलत प्रभाव उनके रिश्ते और कशिश पर पड़ने लगा था, जो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ईशान ने मन ही मन फैसला किया और कामों में लग गया। अभी कुछ देर ही हुई थी कि अचानक ही उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर कशिश का नाम देखकर उसने तुरंत ही कॉल रिसीव की। हेलो काशी, क्या हुआ, इस वक्त फोन किया तुमने? ईशान ने घड़ी देखते हुए सवाल किया, जो अभी बस 11 ही बज रही थी। उसके सवाल के जवाब में दूसरी तरफ से कशिश की खुशी से खनकती हुई आवाज आई। मिश्रा जी, जल्दी घर आइए, मुझे आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी है।
क्या बताना है काशी, फोन पर ही बता दो, घर नहीं आ सकता अभी, ने कुछ देर पहले ही तो दुकान आया हूँ।
ईशान का यूं आने से साफ इनकार करना कशिश को नागवार गुजरा। नाराजगी और गुस्सा शब्दों व आवाज में छलकने लगा। मैं आपका कोई बहाना नहीं सुनने वाली, चुपचाप जल्दी से घर आइए, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ, एक बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है मुझे आपको, कशिश ने सख्ती से आदेश दिया। मतलब साफ था कि इनकार करने का कोई विकल्प ही नहीं। कैसी खुशखबरी? ईशान के सवाल सुनकर कशिश ने एक बार फिर सख्त लहजे में जवाब दिया। आएंगे तभी बताऊंगी, और जल्दी आइए, अगर आप आधे घंटे के अंदर मेरे पास नहीं पहुंचे तो मैं नाराज हो जाऊंगी आपसे और बात नहीं करूंगी आपसे, कशिश ने इतना कहकर फोन काट दिया। ईशान ने परेशान निगाहों से फोन को देखा, फिर निराशा से सर हिलाते हुए रामू को कुछ समझाते हुए घर के लिए निकल गया।